नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं प्रतिभा रोकड़े परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय 3 तारापुर से आज आपके सामने रहीम के दोहे इस पाठ का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे प्रथम हम रहीम जी का जो जीवन परिचय है उसके विषय में जानेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। ये बैरम खां के पुत्र थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। अकबरी दरबार के हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि का गहन अध्ययन किया। राज दरबार में अनेक पदों पर कार्य करते हुए साहित्य में उनकी रुचि बनी रही। उनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम तथा श्रृंगार आदि के दोहों का भी समावेश है। रहीम ने अपने अनुभवों को सरल और सहज शैली में प्रस्तुत किया। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने ब्रजभाषा, पूर्वी अवधी और खड़ी बोली का उपयोग भी अपने काव्यों में किया। गहरी से गहरी बात भी उन्होंने बड़ी सरलता से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की है। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएं दोहों के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनमें से कुछ दोहे आज हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहला दोहा हम पढ़ेंगे, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कई तेई साचे मीत। प्रसंग है रहीम दास जी जो है वो इस दोहे के माध्यम से सच्चे मित्र की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, कही रहीम संपत्ति सगे, जब हमारे पास संपत्ति होती है, जब हमारे जीवन में अच्छा और अनुकूल वातावरण होता है, तो लोग अपने आप ही हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र बनने का प्रयास करते हैं। बनत बहुत बहुरीत, तो यहाँ पर वो हमारे मित्र बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगले वाले पंक्ति में रहीम जी कहते हैं, विपत्ति कसौटी जे कई तेई साचे मित्र। लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति यानी कठिन प्रसंग आने पर भी आपके साथ बने रहते हैं। तेई साचे मित्र, मित्र इसका अर्थ है सच्चे मित्र। वही आपके सच्चे मित्र होते हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। इस दोहे में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है, संपत्ति अर्थ धन दौलत, सगे अर्थ अपने, बनत अर्थ है बन जाते हैं, बहु अर्थ है बहुत से, रीत अर्थ ढंग, विपत्ति अर्थात मुसीबत, कसौटी अर्थात परखना, तेई अर्थ है वही, साचे अर्थ है सच्चे, और मित्र शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है मीत इस शब्द से। तो इस दोहे के माध्यम से उन्होंने एक सच्चे मित्र की परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत की है। अगला दोहा हम देखेंगे, जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तौन छाड़ती छोह। प्रसंग इस प्रकार है, इस दोहे में रहीम दास जी ने जल के प्रति मछली के एक तरफा प्रेम को दर्शाया है। जल के प्रति मछली का जो एक तरफा प्रेम होता है उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। रहीम जी कहते हैं कि मछली पकड़ने के लिए जब हम पानी में जाल डालते हैं, जाल परे जल जात बही, तब क्या होता है, तो जल बहकर बाहर निकल जाता है और वह मछली के प्रति अपना मोह त्याग देता है। जल को तो हम जाल में पकड़ नहीं सकते, लेकिन जिस समय मछली उस जाल में पकड़ी जाती है तो जल क्या करता है, मछली के प्रति अपने मोह को त्याग देता है और उस जाल से बाहर निकल जाता है। जाल यानी मछली पकड़ने का जो जाल होता है वह। लेकिन मछली जो होती है वो जल के प्रति अपना जो प्रेम होता है उसे कम नहीं होने देती। जैसे ही वह जल से अलग होती है वो अपने प्राणों को त्याग देती है और यही सच्चा प्रेम होता है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है कि जिस प्रकार मछली से अलग होने के बाद मछली जब जाल में पकड़ी जाती है तो जल उस जाल से अलग हो जाता है, किंतु मछली जो होती है उस जाल में पकड़ी जाने के बाद जब वह जल से अलग हो जाती है तो अपने प्राणों का त्याग कर देती है, यानी वह उस जल के बिना अपने जीवन को पूरा नहीं कर सकती। दोहे में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। जाल यानी जाल, मछली पकड़ने का जो जाल होता है वह। जल अर्थात पानी। बही अर्थात बहना। तजी अर्थात त्यागना। मीनन अर्थात मछली। मोह अर्थ है प्रेम। मछरी इसका अर्थ है मछली। नीर अर्थ है जल। छाड़ती अर्थ है छोड़ना। छोह अर्थ है प्रेम। अगले दोहे को हम पढ़ेंगे। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। प्रसंग इस प्रकार है। रहीमदास ने इस दोहे के माध्यम से हमें स्पष्ट किया है कि मनुष्य में पाए जाने वाले जो परोपकार के भाव होते हैं वो उसका अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना। व्याख्या इस प्रकार है। तरुवर फल नहीं खात। जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो अपने फल खुद कभी नहीं खाते। अर्थ देखा जाए तो पेड़ के जो सभी हिस्से होते हैं, फल फूल पत्ते उनकी छाल उनके फल उनके जो जड़ें होती है, ये सभी मनुष्य के और दूसरे जानवरों के काम आते हैं। वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता। सरोवर पियत न पान। सरोवर अर्थ है सरोवर। सरोवर में जो पानी संचित किया जाता है वह सरोवर खुद कभी नहीं पीता। उसी प्रकार कही रहीम परकाजहित यानी सज्जन जो होते हैं, भले इंसान जो होते हैं, विद्वान लोग अपने द्वारा संग्रह किए गए धन का संपत्ति, अपने द्वारा वह जो संपत्ति को एकत्रित करते हैं उसका उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं, दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। कठिन शब्द यहाँ पर है तरुवर वृक्ष, खात अर्थात खाते, सरोवर अर्थात सरोवर, पान इसका अर्थ है पानी, पियत अर्थ है पीते, परकाज अर्थ है दूसरे का कार्य, हित इसका अर्थ है भलाई, संपत्ति अर्थ है धन दौलत, सुजान अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति। अगले वाला दोहा है। थोथे बादर क्वार के जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछी ली बात। प्रसंग इस प्रकार है। रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस तरह निर्धन होने के बाद मनुष्य अपने पुराने दिनों की ऐश्वर्य की बातें करते रहते हैं जो कि मूल्यहीन होती हैं। रहीमदास जी यहाँ पर एक थोथे बादर, थोथे शब्द का अर्थ है खोखले, बादर अर्थ है बादल, क्वार अर्थ है अश्विन का महीना और घरात यानी उमड़ कर आना यानी घर आना, निर्धन अर्थ है गरीब, पाछली यानी पिछली। तो जिस प्रकार जो खोखले बादल होते हैं क्वार महीने के यानी अश्विन के महीने के, वह सिर्फ गरजते हैं किंतु बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने सुख में बिताए हुए दिनों की केवल बातें करता रहता है। उसने जिस प्रकार उन परिस्थितियों का अनुभव किया, उन सुखों का अनुभव किया, वही बातों को वह बार बार दोहराता है। वह अपने सुख में बिताए हुए पलों को याद करते हैं लेकिन वर्तमान स्थिति में कोई सुधार नहीं कर पाते, वर्तमान स्थिति में कोई सुधार नहीं लाना चाहते। तो ऐसे मनुष्य की, ऐसे निर्धन मनुष्य की तुलना यहाँ पर रहीमदास जी ने क्वार महीने के बादलों से की है, जो बादल सिर्फ गरजते हैं बरसते नहीं। अंतिम दोहा यहाँ पढ़ेंगे। धरती की सी रीत है शीत घाम औ मेह, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। शब्दार्थ है धरती अर्थात भूमि, रीत अर्थात नियम, शीत अर्थात शरद, घाम अर्थात ग्रीष्म, मेह अर्थात वर्षा, सही अर्थात सहना, त्यो इसका अर्थ है उसी प्रकार, देह इसका अर्थ है शरीर। इस दोहे में रहीमदास जी ने मनुष्य की शरीर की तुलना धरती से की है। वह कहते हैं जिस प्रकार धरती सहनशील है, वह सर्दी गर्मी बरसात इसका कौन इसमें से कोई भी मौसम रहे, वह समान भाव से उन्हें झेल लेती है, जीती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी वैसी ही क्षमता होनी चाहिए। जैसी परे सो सही, वैसी ही क्षमता हमारे शरीर में होनी चाहिए। जीवन में आने वाले हर एक परिवर्तन को, हर एक सुख दुख को हमारे द्वारा सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए और वही उचित होता है। हर प्रसंग में, हर अवस्था में हमारा शरीर जो है इन बातों के लिए सदैव तैयार होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार रहीम के दोहों में हमने देखा कि रहीम जी जो है वो दोहों के माध्यम से कई तरह से हमें नैतिक शिक्षा और जीवन जीने का जो गहरा ज्ञान है इसे देते हैं, और पाठ में दिए गए जो दोहे हैं वह सच्चे मित्र, सच्चे प्रेम, परोपकार, मनुष्य की सहन शक्ति आदि के विषय में बहुत ही सरल और मनोहर ढंग से बताते हैं। यहाँ पर रहीम के दोहे यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।